प्रालेयाद्रेरुपतटमतिक्रम्यतांस्थान् विशेषान् हंसद्वारम् भृगुपति यशो वर्तमयत् क्रौञ्च रन्ध्रम् तेनोदीचिम् दिशमनुसरे स्त्रियगायामशोभि श्यामः पादो बलिनियमनाभ्युद्यतश्यव विष्णो। अन्वयः राले याद्रे उपतटम् तान् विशेषान् अतिक्रम्य हंसद्वारम् भृगुपतियशोर्वर्त्म यत् क्रौञ्च रन्ध्रम् तेन बलिनियमनाभ्युद्यतस्य विष्णोः श्यामः पाद इव तिर्यगायामशोभि विकट में सन उदीचिम दिशम अनुसरे हे। व्याख्या हे मेघ प्राले याद्रे हिमालयस्य उपतटम् तट समीपे तान प्रसिद्धान सिद्धान विशेषान दृष्टव्य वस्तूनि अतिक्रम्य उल्लंघ्य हंसद्वारम् चक्रांग प्रतिहारम् भृगुपतियशोर्वर्त्म परशुराम कीर्ति मार्ग भूतम् यत् क्रौञ्च रन्ध्रम् क्रौञ्च पर्वत छिद्रम् अस्तीति शेषः तेन क्रौञ्च रन्ध्रेण बलिनियम नाभ्युद्यतस्य बलिबन्धनतत्परस्य विष्णोः नारायणस्य वामनस्येत्यर्थ श्यामः कृष्णवर्णः पाद इव चरण इव तिर्यगायामशोभि तिरश्चीन दैर्घ्यशोभि सन् त्वमिति शेषः उदीचीम् उतराम् दिशम् काष्ठाम् अनुसरेः अनुगच्छ। सरलार्थः हे मेघ हिमालयस्य तटसमीपे तानि द्रष्टव्यवस्तूनि उल्लङ्घ्य हंसद्वारभूतेन क्रौञ्चपर्वतछिद्रेण बलिबन्धनतत्परस्य भगवतो वामनस्य कृष्णवर्णश्चरण इव त्वम् तिरश्चीन दैर्घ्यशोभि सन् उत्तरदिशमनुगच्छ। अनुवादः हे मेघ हिमालय पर्वत के तट के समीप प्रसिद्ध प्रसिद्ध द्रष्टव्य पदार्थों का लंघन करके मानस सरोवर में जाने वाले हंसों के द्वारभूत और परशुराम की कीर्ति के मार्ग स्वरूप क्रौंच पर्वत के छिद्र से बलि का बंधन करने के लिए तत्पर भगवान वामन के कृष्णवर्ण वाले चरण के समान तुम तिरछे विस्तार से शोभित होते हुए उत्तर की दिशा की ओर चले जाओ। टिप्पणी प्राले याद्रे प्रलीयन्ते पदार्था अत्र इति प्रलयः प्रपूर्वकात् लिंग श्लेषणे इति धातो एरच इत्यच जहाँ पर पदार्थ लीन हो जाते हैं उसे प्रलय कहते हैं। प्रलय पद से यहाँ पर हिमालय विवक्षित है। प्रलयात् आगतम प्रालेयम तत् आगत इत्यण केक मृत्युर प्रलयानाम यादेरियः इति यादेरियः प्रालेयस्य आर्द्रिः जगत में षष्ठी तत्पुरुष तस्य उपतटम तटस्य समीपे जगत में अव्ययी भावः तांस्तान तत् शब्द से यहाँ पर प्रसिद्ध अर्थ गृहित है। इसलिए यदि शब्द के न होने पर भी विधेया विमर्श दोष नहीं होता। यहाँ पर विप्सा में दित्त हुआ है विशेषान विशेषो एवे द्रव्य द्रष्टव्योत्तम वस्तुनि इति शब्दार्णवः। यहाँ पर विशेष वस्तु कहने से कनखल के निकटस्थ द्रष्टव्य वस्तु गंगा आदि ली जाती है। अतिक्रम में अतिधन क्रम धन एक्त्वा विकट में लेप हंसद द्वारा हंसानाम द्वारम तत् विकट में षष्ठी तत्पुरुष वर्षा समय में मानस सरोवर में प्रस्थान करने वाले हंस क्रौंच पर्वत के रंध्र विकट में छिद्र से संचरण करते हैं। ऐसी प्रसिद्धि के अनुसार यहाँ पर क्रौंच रंध्र को हंस द्वार कहा गया है। भृगुपति यशोर वर्त्म भृगोह अपत्यानी कुमांसो भृगवः यहाँ पर भृगु शब्द से गोत्रापत्य के अर्थ में ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च इस सूत्र से अण होकर एक वचन और द्विवचन में भार्गवः भार्गवौ ऐसे रूप बनते हैं। परंतु बहुत विवक्षा में अति भृगु कुत्स वशिष्ठ गोतमांग गिरोभ्यश्च इस सूत्र से गोत्र प्रत्यय ब्रैकेट में अण का लुक ब्रैकेट में अदर्शन हुआ है। भृगुणाम भृगु गोत्रोत्पन्नानाम पति ब्रैकेट में श्रेष्ठ ब्रैकेट में षष्ठी तत्पुरुष परशुराम इत्यर्थ तस्य यशः ब्रैकेट में षष्ठी तत्पुरुष तस्य वर्त्म तत् ब्रैकेट में षष्ठी तत्पुरुष क्रौंच रंध्रम क्रौंचस्य रंध्रम ब्रैकेट में षष्ठी तत्पुरुष। पूर्व काल में कार्तिकेय के साथ स्पर्धा करते हुए परशुराम जी ने क्रौंच पर्वत में छेद कर दिया, तभी से उनके यश का विस्तार हुआ, पुराणों में ऐसी प्रसिद्धि है। बलि नियमनाभ्युदतस्य बले नियमनम व्यकट में षष्ठी तत्पुरुष तस्मिन अभ्युद्यतः तस्य व्यकट में सप्तमी तत्पुरुष निधन यम धन ल्युट व्यकट में भावे नियमनम अभिधन उद्धन यन धन अक्तः अभ्युद्यतः। प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र दैत्यराज बलि ने अपने पराक्रम से जब देवराज इंद्र को स्वर्ग से निर्वासित कर दिया, तब देवताओं की प्रार्थना से भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर त्रिपाद परिमित भूमि की याचना कर छल से बलि को पाताल में निर्वासित कर डाला। पुराण में ऐसी कथा है। विष्णु हो वेवेष्टीत विष्णु हो तस्य विष्धन्नु हो विष्णुपद से यहाँ पर विष्णु के पंचम अवतार वामन को लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बलि को बांध लिया था। तिर्यगायाम शोभी आयमनम आयामह आंग धन यम धन घय व्यकरण में भावे तिर्यक चासौ आयामह व्यकरण में कर्मधार है तेन शोभते तच्छीलह तिर्यगायाम धन शुभ धन ऋणिनी उदीचीम उद्धन अंच धन क्विन धन नीप उद इत इति अंचुधातो रकारस्य इकारः उत्तरादिगुदेची स्यात् इत्यमरः अनुसरे अनुधन श्री बराबर लिंग जकट में विधौ धन सिप। इस श्लोक में यशो वर्तम इस पद पर रूपक और विष्णु पाद इव यहाँ पर श्रौति उपमा इस प्रकार इन दोनों अलंकारों की निरपेक्षता से स्थिति होने से संसृष्टि अलंकार है। गत्वा चोर्धम दशमुख भुजो श्वासितः प्रस्थ संधे कैलासस्य त्रिदश वनिता दर्पणस्यातिथिस्या संगोच्छ्रायैः कुमुद विशदैर्योवितत् स्थितः खम् राशीभूतः प्रतिदिनमिव त्र्यम्बकस्याट्टहासः। अन्वयः ऊर्ध्वं च गत्वा दशमुखभुजो श्वासितः प्रस्थ संधेः त्रिदश वनिता दर्पणस्य कैलासस्य अतिथिस्याः यः कुमुद विशदैः संगोच्चायैः खं वितत्य प्रतिदिनं राशीभूतः त्र्यम्बकस्य अट्टहास इव स्थितः। व्याख्या जकट में हे मेघ ओधम च उपरि च क्रौंच बिल निर्गमांतरमिति शेषः गत्वा व्रजित्वा दशमुख भुजो श्वासितः प्रस्थ संधे रावण बाहु विश्लेषितः सानुसंधे एतेन नेत्र कौतुक सद्भाव उक्तः तेजस वनिता दर्पणस्य देवललना मुकुरभूतस्य कैलास पर्वतस्य फटिक मयत्वाद्राजतत्वाद्वा बिंबग्राहकत्वेन इयमुक्तिः कैलासस्य शिवपर्वतस्य अतिथिः आगन्तुकः स्याः भवेः यः कैलासः कुमुद विशदैः कैरव निर्मलैः संगोच्छ्रायैः शिखरोन्नत्यैः खम् आकाशम् वितत्य व्याप्य प्रतिदिनं दिने दिने राशीभूतः पुञ्जीभूतः त्र्यम्बकस्य त्रिलोचनस्य अट्टहास इव अतिहास इव स्थितः विद्यमानः अस्तीति शेषः सरलार्थः हे मेघ एवं क्रौंच बिल निर्गमनान्तरं मूर्ध्वं गत्वा रावणभुज विघटित सानुसन्धेः सुरसुंदरी मुकुरभूतस्य कैलासस्य तिथिर्भवः यः कुमुदोज्ज्वलैः शिखरैराकाशं व्याप्य प्रत्यहं पुञ्जीभूतः शिवाट्टहास इव वर्तते। अनुवादः। हे मेघ, तुम क्रौंच पर्वत के बिल से निकलने के अनंतर ऊपर जाकर रावण की भुजाओं से वियोजित प्रस्थ संधियों से युक्त तथा उज्ज्वलता के कारण देवस्त्रियों के आदर्श के समान कैलाश पर्वत के अतिथि बनो, जो कुमुदों के समान उज्ज्वल और ऊंची चोटियों से आकाश को व्याप्त कर प्रतिदिन शिव जी के पुंजीभूत अट्टहास्य के समान स्थित है। टिप्पणी। गत्वा गमधन अक्त्वा दशमुख भुजो छवास्तव प्रस्थ संधे दशमुखानि यस्य सः व्यकर्म बहुव्रीहि तस्य भुजाः व्यकर्म षष्ठी तत्पुरुष तैः उच्छ्वासिताः व्यकर्म तृतीया तत्पुरुष प्रस्थानाः संधयः व्यकर्म षष्ठी तत्पुरुष स्नु प्रस्थः सानुदस्त्रियाम् इत्यमरः दशमुख भुजो छ्वासिताः प्रस्थ संधयोः यस्य सः तस्य व्यकर्म बहुव्रीहि उद्धन स्वस्धन लिच धन इक्तः बराबर उच्छ्वासिताः प्रधन स्थाधन कह बराबर प्रस्थः। वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में 16वें सर्ग में कथा है कि रावण ने अपने पराक्रम के गर्व से लंका में ले जाने के लिए कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं से उठाया, तब वहां के निवासी विचलित होने लगे और पार्वती ने भी डर से शिव जी का आलिंगन किया। तब शिव जी ने रावण के गर्व को खर्व करने के लिए कैलाश पर्वत को अपने चरण से दबाया। भगवान के चरण भार से रावण भी दब गया। तब उसने सोमदेव की सहस्त्र शाखाओं के गान से शिव जी की स्तुति की। फलस्वरूप आशुतोष भगवान ने उसको अभय दिया। इस कथा के अनुसार यह उक्ति है। इसी प्रकार महाकवि माघ ने भी समुच्छिपन्य पृथ्वी वृतांबरम वर प्रदानस्य चकार शूलिनः ससत्तुषाराद्रि सुताश संभ्रम स्वयं गृहाश्लेष सुखेन निष्क्रियम रिकर्म शिष्यपाल वध 1:50। ऐसी ही बात लिखी है त्रिदश वनिता दर्पणस्य बराबर त्रिस्त्र जकट में बाल्य कौमार यौवनाख्या दशा व्यकट में अवस्था येषाम ते त्रिदशा व्यकट में बहुव्रीहि यद्वा त्रिदश जकट में परिमाणम येषाम ते त्रिदशा संख्यया व्यया सन्ना दूराधिक संख्या संख्येये इति बहुव्रीहि बहुव्रीहौ संख्येये डज बहुगणात इति समासांतो डच अथवा तृतीया व्यकरण में यौवनाख्या दशा येषां ते त्रिदशाः त्रिदशानां वनिताः व्यकरण में षष्ठी तत्पुरुष तासां दर्पणः व्यकरण में तस्य व्यकरण में षष्ठी तत्पुरुष देवताओं की बाल्य कौमार और यौवन नाम की अवस्थाएं होती हैं। वा जन्म सत्ता और विनाश नाम की अथवा तृतीय यौवन नाम की अवस्था होती है, इसलिए उनको त्रिदश कहते हैं। कैलासस्य लसनम लासः लसदीप्तौ इति धातोः भावे इति घञ् के जले लासः अस्य कैलासः जगत में स्फटिकः बहुव्रीहि हलदंतात् सप्तम्या संज्ञायाम इति अलुक कैलासस्य व्यकट में स्फटिकस्य अयम कैलासः तस्येदम् इत्यण कैलास धन अण बराबर कैलासः यद्वा केली नाम व्यकट में क्रीडा नाम समूह कैलम तस्य समूह इत्यण केली धन अण बराबर कैलम कैलेन व्यकट में क्रीडा समूहेन आस्यते अस्मिन् इति कैलासः हलस्ते इति घञ् कैल धन आस धन घञ् बराबर कैलासः अतिथि अविद्यमाना जकट में निश्चिता इति अस्य सह नयोस्तर्थानां वाच्यो वाच्योत्तरपदलोपः इति नय्य बहुव्रीहि अनित्यं हि स्थितो यस्मात् तस्मादति स्थिरुच्यते इति मनुः जकड़ में 3 102 स्याह अस्धन लिंग जकड़ में विधौ सिप कुमुद विशदैः कुमुदानि इव विशदाः कुमुद विशदाः तैः जकड़ में उपमान कर्मधारयः यह चिंगोच्चायैः इस पद का विशेषण है। चिंगोच्चायैः शयनानि सायाः त्रिणी सेवायाम इति धातुः त्रिणी भुवोनुपसर्गे इति घञ् उन्नताः सायाः उच्चायाः कुगति प्रादयः इति समासः संगाणाम उच्चायाः तैः व्यकरण में षष्ठी तत्पुरुष वितत्य वि बराबर तन्धन त्यक्त्वा व्यकरण में ल्यप प्रतिदिनं दिने दिने इति व्यकरण में अव्ययी भावः राशिभूतः हराशि राशिः यथा संपद्यते तथा भूतः राशि धन त्वी धन भू धन अक्तः त्र्यंबकस्य त्रीणि अंबकानि व्यकरण में नेत्राणि यस्य सः त्र्यंबकः तस्य व्यकरण में बहुव्रीहि व्यकरण में त्रिषु व्यकरण में लोकेषु अंबकम् दृष्टिः यस्य तस्य अंबकम् नयनम् दृष्टिः इति हलायुधः त्रयाणाम व्यकरण में लोकानाम अंबकः व्यकरण में पिता तस्य व्यकरण में त्रीन व्यकरण में वेदान अंबते व्यकरण में शब्दायते इति त्र्यंबः तस्य अविशब्दे इति धातुः कर्मण्यण इत्यण संज्ञायाम इति कन् त्रिषु व्यकरण में लोकेषु कालेषु वा अंबः व्यकरण में शब्दः वेद लक्षणः यस्य तस्य त्रयः अकारो कारमकाराः प्रणवा अवयवाः अम्बाः व्यकरण में शब्दाः वाचका यस्य तस्य इस प्रकार भानुदीक्षित ने त्र्यंबक शब्द की कई व्युत्पत्तियां की हैं। अट्टहास अट्टश्चासौ हासः व्यकरण में कर्मधारय अट्टावतिशयक छौमो इति अट्टहासो महाहास इति च यादवः कैलाश पर्वत सफेद है इसलिए शिव जी के अट्टहास से उसकी उत्प्रेक्षा की गई है। हास्य आदि पदार्थों के अमूर्त होने पर कवि प्रसिद्धि के अनुसार उनकी धवलता मानी गई है। स्थितः स्थाधन अक्तः व्यकरण में कर्तरी इस श्लोक में कुमुद विषदय ही यहाँ पर उपमा और अट्टहास इव यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इन दोनों का अंगांगी भाव होने से संकर अलंकार है।